ஓம் சிவாய நம. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர்க், தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யூஆர் அபவுட் டு லிசன் சாந்தோக்யோபனிஷத் பிரசன்ட் பை சுவாமி ஸ்ரீ திவ்யானந்தஜி மகாராஜ். தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
சத்ய திரிதா தாபர கிஸ் யுகமே கௌ நஹீ தா அநாதி கால சே. ஹாஹ் ஹோ சகதா ஹை, சப் பம்பே மே நஹீ தே, சப் மனுஷ நஹீ தே, கோய் ஸ்வர்க மே ஹோகா, கோய் பேட் தா, கோய் பேட் தா, कोई कहा था, सब थे, जीव है ना, 84 लाख चक्कर में सब भटक रहे. कभी किस रूप में कहा सत्ययुग में पूरा कोई भेड़ नहीं रहा होगा, कभी मनुष्य भी बना, कभी कर्म भी बहुत किया है. इसलिए अनादिकाल से जो शास्त्रीय कर्म है, कर्म बहुत सबने किया, उपासना भी की. इसे ये समझना नहीं कि सब व्यर्थ है, सब किया है, करने पर आगे होता है. नहीं तो ये जो किया होगा, जब श्रवण करते हैं, जहां जिसका पूर्व संस्कार है वो अपने आप उसमें रुचि हो जाती है. जिसके संगीत का कुछ संस्कार है, बचपन से संगीत में रुचि है और सीख लेता है. दूसरे व्यक्ति तो सीख नहीं पाता है, छोटा बच्चा सीख लेता है. कला चित्र करने में किस किस के बच्चे से छोटे बच्चा सुंदर चित्र कर लेता है. हम कर्म करेंगे तो नहीं बनेगा, आप बना तो मनुष्य बने तो बानर बन जाएगा, किंतु सुंदर बनाता है. चित्र संगीत बोलने वाले कोई सीख लेता है. इसी प्रकार ये कर्म उपासना का संस्कार सब में है. ये जो परमात्मा स्वरूप का ज्ञान, अद्वैत ज्ञान, इसका भी संस्कार है. बहुत श्रवण करने के बाद भी ज्ञान नहीं होता है. ज्ञानम उत्पद्यते पुंसाम क्षयात पापस्य कर्मण. पाप कर्म पूरा क्षय होने पर ही नष्ट होता, ज्ञान होता है. इसे कितने जन्म का संस्कार है, तो संस्कार जरूर है. उसके साथ साथ ये चिंतन करते समय वो संस्कार उद्भूत हो जाएगा, तो आपको उसका लाभ अनुभव में आ जाएगा. थोड़ा प्रयास करना पड़ता है उद्बोध करने के लिए, संस्कार जरूरी है. ये साम हो गया बाघ में, ऋचा में श्रेष्ठ हो गया साम, और साम का रस हो गया उद्गीत. सामना उद्गीतो रस. अब ये गिनती करो, प्रथम रस हो गया पृथ्वी, आगे जल, औषधेय, पुरुष, बाघ, ऋग, साम, उद्गीत. उद्गीत कितना था हुआ? अष्टम. अभी आगे कहेंगे. सयेषां रसानां रसतमः परमः पराद्यष्टमो यदुद्गीत. सयेष जो उद्गीत है, रसतम हुआ. रसानां रसतम, रसानां मध्य जितने सब रस है, कोई रस 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 क्रम से पृथ्वी जल इसी क्रम से रस हुआ, औषधि पुरुष वाघ इत्यादि, इसी रस में रसतम सबसे श्रेष्ठ रस हो गया कौन? उद्गीत. परम निरतिशय, उसे बढ़कर और दूसरा कोई नहीं. सबसे परम हो गया रसानाम रसतम. तमप प्रत्यय होता है, रसतम सबसे श्रेष्ठ हो गया परम. उसको कहते परार्ध्यो परम च तदार्धम च परार्ध. उसके स्थान को योग्य होता है परार्ध, परमात्मा स्थान की योग्य. परार्ध शब्द का अर्थ परार्ध परम च तद अर्धम च. अर्ध शब्द का अर्थ स्थान. परार्ध हो गया परमात्मा का स्थान, किंतु इसमें है परार्ध्यो. परार्ध्य में परमात्मा के स्थान के योग्य. अर्ध हो गया स्थान, पर हो गया उत्कृष्ट, परमात्मा स्थान हो गया परार्ध उत्कृष्ट स्थान. उसके योग्य जो स्थान है, परमात्मा के योग्य स्थान को कहा गया परार्ध्यो. अर्थात ओंकार जो है उद्गीत रूप से जिसको कहा गया, ये परमात्मा का स्थान के लिए उचित योग्य स्थान है. कौन स्थान हुआ? ओंकार. ओंकार हो गया परार्ध्य. परार्ध्य मतलब परमात्मा के स्थान के लिए योग्य. परमात्मा स्थान है, अर्थात परमात्मा जिस प्रकार उपास्य है, इस ओंकार इसी प्रकार उपास्य है. परमात्मा जहां स्थित है, वो स्थान भी परमात्मा का उपास्य है. जिस पदों पर परमात्मा है, जिस आसन पर परमात्मा है, वो आसन भी इसी प्रकार पूज्य है. जो श्रेष्ठ होते हैं परमात्मा, कहीं रखते हैं उनके जो स्थान है, कहीं आसन देते हैं, वो आसन इसे उत्कृष्ट होना चाहिए, उसमें हाथ पैर नहीं लगना चाहिए. उनका ये दिया भाष्य में परमात्मावद उपास्य, परमात्मा के समान उपास्य है कौन? ओंकार. क्योंकि अष्टम हो गया सार, इसमें क्या हो गया? सारा ब्रह्मांड में सार हो गया. सारे भूत चराचर का रस हो गया पृथ्वी, चराचर भूत भौतिक पदार्थ सब आ गए, इसी क्रम से आकर के अंत में ओंकार हो गया। उद्गित रस श्रेष्ठ है और परमात्मा का स्थान योग्य है ओंकार। ओंकार से और कोई परम उत्कृष्ट नहीं। ओंकार का जो लक्ष्यार्थ है अमात्रा आत्मा का चतुर्थ पाद वही ब्रह्म है। ओंकार में ब्रह्म भी आ गए, तीन पाद पहले स्थूल सूक्ष्म कारण अम तीनों अध्यस्त है, अमात्र चतुर्थ पाद ब्रह्म अधिष्ठान, ब्रह्म में सब अध्यस्त है, ओंकार में ब्रह्म भी है। वाच्य शब्द से तो तीनों ले लेंगे, लक्ष्य होता है ब्रह्म। ओंकार का जो अम का वाच्य आते तीन हो जाएंगे, जागर सपन सुश्रुति स्थूल सूक्ष्म कारण विश्व तेजस प्राज्ञ, ये सब हो जाएंगे। अंत में लक्ष्य है शुद्ध ब्रह्म। इसी ब्रह्म एक अद्वितीय है, सबका आत्मस्वरूप है, अहम आत्मा गुड़ा केश सर्वभूता से स्थित। भगवान कहते सारे भूत में आत्मा परमात्मा एक ही है। एक कौन से पारमार्थिक द्वैत नहीं, व्यावहारिक द्वैत का निषेध नहीं होता है। जीव ईश्वर का भेद, जीव जीव का भेद व्यावहारिक भेद है, पारमार्थिक अद्वितीय तत्व है। और वो कारण शरीर में एक है अज्ञान, उसके बाद ये सूक्ष्म स्थूल प्रपंच बना अनेक हो गया, अनेक व उपाधि के कारण अनेक हो गया। और उपाधि का भेद है, सामने मुख एक है, दस दर्पण है, दस प्रतिबिंब हो गया, अधिक रखें तो अधिक प्रतिबिंब हो जाएगा। और उपाधि के भेद बहुत होने पर भी पारमार्थिक आपको कभी से भेद विरुद्ध लगता है, एक ही मेरा मुख है और दस क्यों दिखते हैं, दस तो दिखते हैं, भेद एक मुख आपका मुख एक है या दस है, दस दिखता है। जिस प्रकार दस दिखने पर भी एक का कोई विरोध नहीं हुआ, ये तो खाली दस बताते दर्पण के लिए। चंद्र का प्रतिबिंब कितने स्थान में प्रतिबिंब, जितने जल में प्रतिबिंब, जहां जहां जल है सब जल में चंद्र का प्रतिबिंब, कल रात को चंद्र थे प्रतिबिंब हुआ, कितने स्थान कितने प्रतिबिंब होगा बताओ, बहुत संख्या से नहीं कर सकते, अनेक प्रतिबिंब हो जाएगा तो अद्वितीय चंद्र का कोई विरोध है। इसी प्रकार अनेक जीव होने पर भी अद्वितीय ब्रह्म का कोई विरोध नहीं, कुछ बिगड़ता नहीं, एक अद्वितीय है ब्रह्म। ये उद्गित हो गया, अष्टम स्थान हो गया, सार स्थान उद्गित हो गया, श्रेष्ठ हो गया। अब इसमें ऋक साम यज शब्द से कहा ऋक साम उद्गित किया है अभी विचार करने के लिए, क्योंकि अभी कहा था उपासना करेंगे ओंकार का, किस प्रकार उपासना करना चाहिए और कौन कौन इसमें क्या है, ऋक आदि क्या है, फल क्या है, इस उपासना में कतमा कतमर कतमत कतमत साम कतम कतम उद्गित विमृष्टम भवती कतमा कतमा ऋक। वो ऋक जो कहा गया वो ऋक क्या है, कौन से ऋक है, कतमा सा ऋक वो ऋक कौन है। कतम शब्द बहुत में एक कहते कतम, ये इसमें बहुत है, कतम कठ कौन है, कठ पढ़ने वाला ये बहुत में कतम कठ बहुत बड़ी कतम ब्राह्मण, ये पांच बैठे से ब्राह्मण कौन है, एक ब्राह्मण है तो कौन है, तो ऋक कौन है। अब कतमत कतमत साम साम नपुंसक है इसलिए कतमत क्या है, साम कौन है, ऋक क्या है, साम क्या है और उद्गित क्या है, इसका विचार विमृष्टम भवती इसका विचार करते हैं, विचार करना चाहिए वो बताना चाहिए, विचार किया जाए तो क्या है उसका विचार अभी करते हैं। क्योंकि बताया वाघ का रस हो गया ऋक, वाघ रस ऋक, ऋचा का रस हो गया क्या साम, साम का रस हो गया उद्गित, ये तीन ही अंत में आया। पहले तो सब आगे पृथ्वी जल औषधि पुरुष और वाघ पांच हो गए, आगे तीन है ऋक साम उद्गित, जो अंत में तीन आए वो ऋक क्या है, साम क्या है, उद्गित क्या है, विचार करना। वाघ एवर्क प्राण साम वो मित्य तद अक्षर उद्गित तद वाई तन मिथुनम यद वाक् प्राणश्चरिक साम च, ये कहते वाघ एव ऋक, ऋक क्या कहते वाघ एव ऋक और प्राण साम, वाघ पहला आ गया वाघ ऋचा हो गया, वाघ से ऋक उत्पन्न होता है, वाघ इंद्रिय के द्वारा ऋचा की उत्पत्ति होती है। ऋचा का कारण वाघ होने से वो कारण शब्द उसके कहते वाघ एव रिक, ये वाघ ही रिक है, रिक तो शब्द ही है, वाघ एव रिक। और साम क्या है, ऋचा का साम का रस प्राण साम, साम गान करने के लिए प्राण से ही होता है। लंबा कंठ अधिक हो तो बोल सकते हैं, इसमें आएगा साम मंत्र, मंत्र जो आएगा तो लंबा कंठ है तो लंबा बोल सकते, प्राण अधिक हो तो, प्राण अधिक नहीं हो तो बीच में फिर रुकना पड़ता है। जो कोई के संगीत में बोलते समय इसे लंबा कर बोलते हैं, बहुत लंबा कर देते तो बड़े सौ लोग पुरस्कार ताली रहते हैं, इसे कोई संगीत कहते लंबा बोलता है। ये जो प्राचीन शास्त्रीय संगीत में विषा कहीं के लंबा करते हैं, अभी भी कोई बोलते समय लंबा करके बहुत लंबा ऐसे करते हैं, योगी लोग प्राणायाम अभ्यास करते हैं, ये गान करते समय भी प्राणायाम हो जाता है। बैठ करके जो प्राणायाम करते हैं तो ठीक है, जब पाठ करते हैं तभी प्राणायाम भी हो जाता है। इसे पाठ में लाभ है, संस्कृत पाठ उच्चारण से ही पवित्र होता है, अंतगुण शुद्ध होता है, श्रवण से लाभ होता है, और उच्चारण करते समय मन एकाग्र होता है, प्राणायाम हो जाता है। प्राण के साथ मन का संबंध है, इसलिए ध्यान करते समय प्राणायाम करते हैं। प्राण जितने दौड़ेगा जोर से चलता है, मन इतने भागता है। मन को स्थिर करने के लिए प्राण को रोके, प्राण को लंबा धीरे 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 प्राण जहू चल जोर से चलता है। जो ध्यान में अभ्यास करते हैं, ध्यान कर बैठेंगे, ध्यान में बैठते समय कभी इसे लगता है सांस प्रश्वास बंद हो गया, बंद नहीं होता, चलता है, तो इतने धीरे चलता है, स्वयं अनुभव करे तो लगता है जैसे चलता नहीं, प्राणी से धीरे 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 चलता है। और जब प्राणायाम करते हैं तो धीरे धीरे करने का अभ्यास होता है तो मन भी स्थिर होता है। ये पाठ करते समय जो लंबा करते रेचक पूरक कुंभक तीन प्रकार करते हैं कि छोड़ते जाओ लबा पूरा खाली करो छोड़ो, और लेते समय पूरा भर कर लेना पूरक, और कुंभ के रोकने का रखना रोक करके, और लंबा तर जो बोलते जाए बोलते जाए बोलते जाए, बीच में फिर नहीं लेना ऐसे करे तो ये बोलते फिर बात ग्रहण कर फिर कुछ खींच लेते हैं पूरक करे फिर बोलेंगे, तो यही सब होता है, प्राणायाम ही हो जाता है। इसलिए प्राण से निवृत्त होता है साम, साम गान कर लेंगे प्राण कारण, प्राण उसका योनि कारण हुआ, रवाग हो गया ऋक का, तो वाघ एव ऋक प्राण साम, ओम इतद अक्षरम उद्गीत, उद्गीत तो ओम ही अक्षर ही उद्गीत है, ओम अक्षर साम के अवयव उद्गीत नाम कहे, उसका एक भाग होने से उसको भी उद्गीत का ओम इतद अक्षरम, इति एतद अक्षरम का अगर इस अक्षर शब्द को लेना, ओम इति यह अक्षर ये शब्द ही प्रतीक है वाचक है, ये अक्षर उद्गीत तद वे एतन मिथुनम यद वाक्च प्राणश्च ऋक्च सामच, तद वे ये प्रसिद्ध है एक मिथुन युगल दो, क्या है युग, यद वाक्च प्राणश्च वाक और प्राण, वाक और प्राण दो है। आगे कहते ऋक्च सामच, ऋक साम ये भी दो हो गए, दो मिलकर के दो मिथुन नहीं है, एक ही मिथुन है, तद वे एतन मिथुन एक वचन, जो वाक है उसको ऋक शब्द से कहते और प्राण को साम शब्द से कहते, वाक और प्राण जो है वो ऋक और साम वही है। वाक को किस शब्द से कहा गया, दूसरा शब्द क्या कहा गया, वाक के लिए ऋक और प्राण के लिए साम, तो वाक और प्राण एक मिथुन हुआ, उसी मिथुना का दूसरा नाम है रीक च साम च, रीक और साम ये दो युगल है, रीक और साम, ऋचा में श्लोक में साम को आरूढ़ करके रख करके बोला जाता है, श्लोक बोलते समय साम है गीति, ऋचा है श्लोक, उसमें साम आरूढ़ मतलब उसके ऊपर स्थित रहेगा, स्थित मतलब उसका गान करते समय श्लोक बोलते समय साम को रख करके लंबा करके गीति करते है, तो रीक और साम एक मिथुन दो हुआ, अरीक का कारण हो गया वाघ, शाम का कारण हो गया प्राण, वाघ और प्राण, वही दो ये मिथुन है जो भाग है ओरी के जो प्राण है वाम है एक ही मिथुन हुआ दो नहीं। तदेतन मिथुनम ओमिते तद अस्मिन अक्षरे संसृजते यदा वै मिथुनौ समागच्छत आपयतो वै तावन्यन्यस्य कामम। तदेतद मिथुनम ये मिथुनो क्या ओम इते तस्मिन अक्षरे संसृजते ओम इसी अक्षर में ये दोनों संसृत होते संबद्ध होते है अक्षर में संबद्ध है जो अक्षर ओम यह है ये मिथुन उसमें संबद्ध है उसमें है क्योंकि वही सबके अंत में उद्गित आया उद्गित हो गया उसका भी रस जो वाक रिक साम हुआ वो साम का भी रस उद्गित साम का रस उद्गित उनसे जो सबसे अंत में उद्गित आया वाक प्राण दोनों उसमें साम रिक दोनों उसमें स्थित है उद्गित हो गया मूल उसमें ही साम और रिधि के दोनों संबंध है उसी का सार हुआ उसमें स्थित है उत्पत्ति स्थिति लय हेतु रिक और साम की उत्पत्ति स्थिति लय हेतु हो गया उद्गित तो उद्गित में जिस उत्पत्ति होगी वो उसमें है जिस मिट्टी से घट बनता है वो घट मिट्टी में है अनविभक्त होकर के उसकी अभिव्यक्ति होती है तिल से तेल निकलता है तेल उसमें है तो उद्गित में ये रीक और साम दोनों है अनाविभक्त होकर के तो जो ओंकार उद्गित है उसमें है रीक साम दोनों मिथुन स्थित है संबद्ध है। इसलिए क्या हुआ ये जो सर्व काम आपति गुण सारे काम की प्राप्ति होती इस उपासना से जो जिस कामना से उपासना करेगा वो कामना की प्राप्ति होती है इसकी उपासना से उपासना करते करते इतने तन्मय हो जाए एकाग्र हो जाए सर्व काम आपती सारे विषय की जिसकी ये इच्छा करेगा ये आपती गुण वाला हो गया ओंकार सारे काम की प्राप्ति आपती का प्राप्ति तो आपती प्राप्ति रूप गुण वाले ओंकार की उपासना करे वही परमात्मा है। परमात्मा सब काम प्रापक सारे फल देने वाले परमात्मा है ओंकार की उपासना परमात्मा बुद्धि से करे तो ओंकार ही सारे काम प्रापक है तो आपति रूप गुण उसमें ओंकार में है उसमें आपति रूप गुण के लिए उदाहरण देते हैं यदा वे मिथुनो समागच्छत आपयो तो भी तव अन्योन्य से काम ये दृष्टान्त देते हैं इसी उपासना से प्राप्ति काम प्राप्ति रूप गुण क्यों क्योंकि जैसे त्रिपुरुष पति पत्नी दोनों का संबंध करते हैं तो तव अन्योन्य से कामम आपयत दोनों परस्पर कामना की पूर्ति करते हैं इच्छा का पूर्ण करते दोनों परस्पर को सुख देते हैं एक दृष्टांत देकर के ये कहा इसी प्रकार ये आपति गुण विशिष्ट ओंकार का उपासना करे परमात्मा बुद्धि से उसमें गुण क्या है आपति रूप गुण प्राप्ति रूप गुण उसमें एक दृष्टांत लौकिक दृष्टांत दे दिया तो लोक में भी श्रुति भी समझाने के लिए लौकिक दृष्टांत देकर समझाती है लोग समझ लेंगे किस प्रकार से आपति गुण तो लोक में जिस प्रकार स्त्री पुरुष संगम करते परस्पर संबंध करके परस्पर सुख देते हैं इसी प्रकार ये ओंकार में आपति गुणवत्व है ऐसे गुण वाले ओंकार का ध्यान करें सर्व काम प्रापकत्व तो ये अर्थ है जो इच्छा का पूरक परमात्मा सर्वे काम को प्राप्त कराने वाले ऐसे उपासना करे एक गुण हुआ ऐसे उपासना जो करेगा उसका फल जिस गुण से उपासना करेगा ऐसे फल मिलेगा ये तो चल रहा है सकाम उपासना करने वाले की कि सर्वत्र निष्काम उपासना करेगा तो उपासना का फल अंतकरण शुद्धि के द्वारा ज्ञान साक्षात्कार इसको बोलना नहीं उपासना का फल कहेंगे जिसको फल चाहिए फल इच्छा से करेगा तो फल मिलेगा उपासना करने से फल मिलेगा जरूर अब इसमें आएगा वृष्टि उपासना करने से वृष्टि करा सकता है उस समय हम बताएंगे कोई उपासना करके वृष्टि कराए थे करा सके मंडेश्वर जी राजस्थान में वृष्टि कराए थे, इसी में आगे अभी कल पुस्तक जन्म ले आए। ऐसे उपासना करेंगे जो एकाग्र करते हैं, कराते हैं, वृष्टि शाम में वृष्टि उपासना करके वृष्टि कराए थे, जिस समय बादल कुछ नहीं था, वृष्टि हुई थी। अभी भी कभी काल पुरुष कोई मिला था, देखा था, तभी की बात बताया था, उस समय वो था वहां। काली एक महिला आई थी, काली बताई, वो उन्होंने उस समय था, वो कितने साल की बात बताई थी, काली आई थी, जो विष्णु मध्यान जी शास्त्री थे उस समय राजस्थान फलोदी में एक व्यवस्था कराई थी, इसमें आई उपासना आई बताई, जैसा ही बताएंगे। तो ये उपासना कौन से फल मिलते, किन्तु करना उपासना करे, इस प्रकार जो फल जिसको मिलता है इस उपासना कर्म का ही फल है। अभी जिसके पास जो कोई संपदक उत्कर्ष है, किससे मिला, कैसे मिला, सब चाहते ऊपर बढ़ने के लिए, कौन नहीं चाहता श्रेष्ठ होने के लिए, क्यों सब नहीं हो पाते हैं? किसी के पास किसी प्रकार धन विद्या सम्मान ख्याति कुछ है, पुत्र पुत्र आदि बहुत है, कर्म उपासना का ही फल है, इस जन्म का नहीं, पहले किया था उसका फल है। आपके पास संपत्ति आई थी कि आपने पुरुषार्थ किया, परिश्रम किया, ठीक है, वो कर्म पुरुषार्थ कराया और सफलता तो देने वाले कर्म उपासना ही है, परमात्मा ही देते आपके पूर्व कर्म उपासना से। जो कर्म आप करते हो, जो व्यवसाय आप करते हो, वो व्यवसाय करने वाले कितने लोग होंगे, सबके पास समान धन संपत्ति आ जाती है नहीं, ये सबको मालूम है। कोई भी वैद्य है, डॉक्टर बनता है, पढ़ने वाले बहुत हो, सबके पास समान नहीं होता है, कोई अच्छा भी है उसके पास रोगी कम जाते क्योंकि उसका औषध ठीक नहीं होते, कोई कम जानता है किंतु उसके ऐसा है कुछ औषध देता ठीक हो जाता है, लोग उसके पास बहुत रुपया बहुत मिलता है, ये देखा गया। ये कोई जरूरी नहीं कि बहुत पढ़ा है बहुत जानता है तो अधिक, ऐसा नहीं। तो जिस किसके पास जैसे उत्कर्ष आता है किसी प्रकार पूर्व कर्म उपासना का ही फल है। अभी उपासना करने से उपासना का फल तो तुरंत नहीं मिलता है, किंतु फल मिलता है जैसे जो चाहेगा, आपको तो इसी जन्म में वही फल मिलेगा जो प्रारब्ध कर्म लेकर के आप आए उसका फल मिलेगा। अभी उपासना करेंगे तो अभी तुरंत नहीं, कुछ कुछ फल है शीघ्र फल प्राप्ति के लिए, कुछ फल है देहांतर में प्राप्त होगा, व्यर्थ नहीं होता है। जिस प्रकार आपको अभी कुछ मिला, एक ही प्रकार योग्यता वाले सब एक समान संपत्ति ख्याति वाले नहीं है, परिश्रम करते हैं, परिश्रम तो जो ठेली चलाता है वो ज्यादा परिश्रम नहीं करता है क्या, चाय बिकने वाले परिश्रम नहीं करता है क्या, किंतु उसमें कोई कितने ऊपर उठ जाता है, कोई कहां रह जाता है, सब प्रकार ऐसा है, पुण्य कर्म का उपासना का फल है। तो ये होता है जो इसे उपासना करेगा उसका फल एक वाक्य में है, आप इतः वे कामना भवति ये इतद एवं विद्वान अक्षरम उद्गीतम उपासते कामानम आपईता। जो उपासना करेगा, यदि कोई ऋत्विक ब्राह्मण उपासना करता है, यजमान कोई फल दे सकता है, आपईता प्रापक यजमान को प्राप्त करा देगा, इसलिए ऋत्विक ब्राह्मणों को भी उपासना करनी पड़ती है तभी श्रेष्ठ होते हैं। आपईता हवे कामानम, कामा के प्रापक यजमान को फल दे देगा, जो एतद एवं एतद उद्गीत को एवं विद्वान ऐसे जान करके ऐसे उपासना करता है, ये प्राप्ति गुण वाला सर्व काम प्रापकत्व तो गुण विशिष्ट ओंकार है, ऐसा समझ करके इसी गुण के साथ उपासना करता है, उपासना का ही फल है। मुद्गल उपनिषद वाक्य है, तं यथा यथ उपासते तदेव भवति, जैसे उपासना करता है ऐसे फल प्राप्त होता है। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।